जब से अरमान दिल्ली वापस आया था तब से उसे नव्यांशी का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। उसने नव्यांशी से पूछने की भी कोशिश की पर नव्यांशी ने कुछ नहीं बताया। वो उससे नजरें चुरा रही थी और साथ ही वो रोहन और उसके पास आने से बच रही थी। हालांकि अरमान ने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि उनको इग्नोर करके वो अपने काम में ही लगी हुई थी, इसीलिए उसे यही लगा कि अपने वर्क शेड्यूल के चलते वो उन्हें इग्नोर कर रही है। लेकिन देर रात को जब अरमान अपने वर्क स्पेस में काम करने के लिए आया तो उसे चीज़ें पहले के हिसाब से इधर उधर लग रही थीं। उसकी आदत थी कि वो हमेशा हर चीज़ को सलीके से उसी की जगह पर रखता था और वो जगह कभी इधर से उधर भी नहीं होती थी। हर बड़ाहट में नव्यांशी ने रोहन की फ़ाइल को भी अपनी जगह पर रखने के बजाय वहाँ रखे ड्रॉअर के अंदर रख दिया था, जिसके बाद अरमान का शक यकीन में बदल गया था कि उसके जाने के बाद ज़रूर नव्यांशी वहाँ आई होगी। पता नहीं तुम्हें कितना और क्या पता चला है, पर जो भी है वो ठीक नहीं है और समझ नहीं आ रहा कि मैं मिस्टर चौहान को क्या जवाब दूंगा अगर तुम्हें शिवांशा के बारे में सब कुछ पता चल गया तो, अरमान ने मन ही मन कहा। उसके चेहरे पर हल्के घबराहट के भाव उभर आए थे और उसने नव्यांशी को तुरंत वहां से भेजने का सोच लिया था। अरमान इस वक्त नव्यांशी के कमरे में बात करने के लिए जा रहा था। वो उस तरफ बढ़ते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, जिस तरह का तुम्हारा बिहेवियर है, हर चीज़ की तह तक जाना, उसके बाद अगर तुम्हें कुछ नहीं भी पता चला है तो तुम्हारा इस घर में रहना ठीक नहीं है। सॉरी नव्यांशी, पर अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती हो। नव्यांशी अपने कमरे में काम कर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आहट सुनकर उसने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने अरमान खड़ा हुआ था। अरमान उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। नव्यांशी ने सिर हिलाकर बिना किसी भाव के कहा, रात के 12 बज रहे हैं अरमान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए? अरमान नव्यांशी के पास पहुंचा और दांत पीसते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें बेसिक मैनर्स भी पता है, और तो और तुम्हें तो ये भी पता है कि किसके कमरे में कब जाना चाहिए। जिस तरह से तुम मेरे जाने के बाद मेरे वर्कस्पेस की तलाशी ले रही थी उससे मुझे लगा नहीं कि तुम्हें इतना नॉलेज है कि किसी के कमरे में उसकी इजाज़त के बिना नहीं जाना चाहिए। अरमान की बातों से नव्यांशी समझ गई थी कि उसे सब पता चल चुका था। उसकी नज़रें खुद बखुद नीची हो गई थीं जबकि अरमान अभी भी उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। नव्यांशी ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और उठकर अरमान के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो एक्चुअली मुझे कुछ चाहिए था इसलिए मैं उस तरफ गई थी, मैंने सब कुछ वापस पहले की तरह कर दिया है, नव्यांशी ने धीमी आवाज में कहा और बात करते वक्त उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। हाँ बिल्कुल, पर ये बात क्या तुम मेरे चेहरे की तरफ देखकर आंखों में आंखें डालकर कह सकती हो? वो क्या है ना कि जब लोग इस तरह नजरें चुराकर मुझसे बात करते हैं तो मुझे यही लगता है कि वे झूठ बोल रहे हैं, अरमान ने सख्त लहजे में कहा। नव्यांशी ने अपना चेहरा ऊपर किया और अरमान की आंखों में देखा। उसकी मुठ्ठियाँ कसी हुई थीं और वो अपने इमोशंस पर चाहे कितना भी काबू करने की कोशिश कर ले, लेकिन उसकी आंखें भर आई थीं। अरमान की आंखों में देखते ही उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। अरमान उलझन भरी निगाहों से नव्यांशी की तरफ देख रहा था। वो नहीं जानता था कि नव्यांशी को कितना और क्या पता चला है और वो अपनी तरफ से पहल करके किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। अरमान बिल्कुल चुप था पर नव्यांशी की आंखों में आंसू देखकर उसे बुरा लग रहा था। उसने जल्दी से नव्यांशी के गाल पर हाथ रखा और अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मैंने इतना भी बुरी तरह से नहीं डांटा है कि तुम रोने लग जाओ। मैंने कभी तुम्हें इमोशनल और रोते हुए नहीं देखा है और तुम पर यह सूट भी नहीं करता है। ठीक है, आगे से मेरे वर्कस्पेस में मत जाना और मैं तुम्हारे रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ रहा हूँ। डोंट वरी, यहाँ आसपास ही देख दूंगा और ये एरिया काफ़ी सेफ है, तो तुम्हें अपनी सेफ्टी की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर अरमान वहाँ से जाने को हुआ तभी नव्यांशी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो भारी आवाज़ में बोली, तुम मुझे इसीलिए निकाल रहे हो ना क्योंकि तुम्हें लगता है कि सच जानने के बाद मैं रोहन के साथ अलग बर्ताव करूँगी? दूसरी तरफ अरमान की आंखें बड़ी हो गई थीं। नव्यांशी की बातें काफ़ी उलझन भरी थीं। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो रोहन के कौन से सच की बात कर रही है, उसके साथ फिजिकल असॉल्ट और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने के बारे में या फिर उसके देवराज ठाकुर के रिश्तेदार होने की वजह से। अरमान अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी उसे नव्यांशी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत उसकी तरफ पलटा। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है कि एक मासूम बच्चे के साथ वो सब करे? भाई और तुम सब लोग पहले से जानते थे ना और तुमने हमसे छुपा कर रखा। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है और जब भी उसके सामने जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो कितना कुछ झेल रहा है। उसकी जगह कोई और होता तो ये सब कभी नहीं सहन कर पाता, ऊपर से वो तो चल तक नहीं सकता है, नव्यांशी ने सुबकते हुए कहा। जैसे जैसे वो रोहन के बारे में बात कर रही थी वैसे वैसे उसके अंदर का दुख बाहर निकल रहा था। नव्यांशी के शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे और वो अटकते हुए बोल रही थी। उसे शांत करवाने के लिए अरमान उसके पास आया कि तभी वो अरमान के गले लग गई थी। हालांकि अरमान को उसके करीब आने पर हल्का सा झटका सा लगा। आज तक उसने कभी किसी लड़की को हग नहीं किया था। अरमान की मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं, जबकि नव्यांशी उसके सीने से लगे हुए बच्चे की तरह सुबक रही थी। उसे सहलाने से पहले अरमान का हाथ हल्का सा कांपा, लेकिन फिर उसने नव्यांशी के बाजू पर हाथ रखकर उसे हल्के हाथ से सहलाना शुरू कर दिया था। वो ठीक है और उसके साथ ये सब करने वाला अंकुश है, अरमान ने झिझकते हुए बताया, मानो उसे ये कहते हुए अफसोस हो रहा था कि वो अंकुश के ही परिवार का हिस्सा है। अंकुश का नाम सुनते ही नव्यांशी की आंखें बड़ी हो गईं। वो जल्दी से अरमान से अलग हुई और उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या वो एक बच्चे के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? मुझे अच्छे से पता है उसने ये सब इसीलिए किया होगा क्योंकि शिवांशा भाभी ने मेरे भाई के साथ शादी कर ली, और हमारे राजावत फैमिली के साथ कैसे रिलेशन है ये तो पूरा उदयपुर जानता है। यकीन नहीं होता कि इतने घटिया लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरी राजावत फैमिली को खत्म कर दूं। आइडिया बुरा नहीं है, और शुरुआत तुम मुझसे कर सकती हो, मैं भी उसी फैमिली से हूं और तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अरमान ने हल्के लहजे में कहा। और इसी के साथ नव्यांशी को ख्याल आया कि वो अरमान के बेहद करीब है। वो उससे दूर जाने लगी, लेकिन तभी अचानक अरमान ने उसकी लोअर बैक पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर जाने से रोक लिया था। ये पहली बार होगा जब अरमान और नव्यांशी एक दूसरे के इतने करीब थे और बिना पलके छपकाए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नव्यांशी ज्यादा देर तक अरमान से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाई और वो हड़बड़ाकर उससे दूर हो गई थी। अरमान ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ किया। उसने हड़बड़ाती आवाज में कहा, मेरे वर्कस्पेस में मत जाना और मैं तुम्हारे लिए रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ दूंगा, बस एक दो दिन का टाइम दो मुझे। ठीक है, आगे से नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर भी कहीं नहीं जाने वाली हूँ, नव्यांशी ने जल्दबाजी में जवाब दिया। अरमान के कान लाल होने लगे थे और वहीं नव्यांशी ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। वो तुरंत सफाई देते हुए बोली, मेरा मतलब है कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली हूँ।
यहाँ रहना है तो यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे। रोहन के बारे में कुछ पता चला है तो उसके सामने जाहिर मत होने देना, और उसे इस तरह तरस भरी निगाहों से देखना बंद करो, वो काफी ब्रेव है, अरमान ने इतना ही कहा और फिर कमरे से जाने लगा। उसकी नव्यांशी की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वहीं उसके जाते ही नव्यांशी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ वेद और शिवांशा अभी भी छत के ऊपर ही थे और वेद के सेट किए हुए टेंट हाउस के अंदर थे। शिवांशा को नींद आ चुकी थी, जबकि वेद उसके बालों को सहलाते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वेद के चेहरे पर सुकून के भाव थे। उसने खुद नोटिस किया था कि शिवांशा इस सब अरेंजमेंट से कितनी खुश हुई थी। वो मन ही मन बोला, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट ऐड कर पाया। अब तक तुमने जो भी मिस किया है उसकी कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में तुम्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। वेद ने महसूस किया कि रात को ठंड हो रही थी तो शिवांशा उसके अंदर सिमटने लगी थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने शिवांशा को ब्लैंकेट उड़ा दिया था। वेद भी सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजा। शिवांशा की नींद ना टूट जाए ये सोचकर वेद ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और टेंट हाउस से बाहर आकर दूसरे कोने में जाकर बात करने लगा था। हालांकि वो दूर से शिवांशा को ही देख रहा था। भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको इसके पास आना ही होगा, ये पूरी तरह पगला गया है, तेज ने कॉल पर कहा, जो इस वक्त अंकुश के सामने खड़ा हुआ था। अंकुश ने उसकी सिक्योरिटी में खड़े गार्ड पर हमला कर दिया था जब उसने उसे खाना खिलाने की कोशिश की। तुम एक नॉर्मल से आदमी को नहीं संभाल सकते क्या? वेद ने चिढ़न भरे स्वर में कहा। इतने अच्छे मोमेंट के बाद वेद का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो शिवांशा को छोड़कर चला जाए। हाँ, संभाल सकता हूँ, लेकिन भाई एक बार आ जाइए ना, ताकि इसके दिल की इच्छा भी पूरी हो जाए, तेज ने धीमी आवाज में कहा। वेद ने गहरी सांस ली और उसकी बात पर हामी भर दी थी। वेद ने यही सोचा था कि वो अंकुश से मिलने कभी नहीं जाएगा, लेकिन मजबूरी में ही सही उसे अंकुश के पास जाना पड़ रहा था। वेद शिवांशा के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे ले जाने लगा। वहां से जाने से पहले वेद ने शिवांशा को बेड पर लेटाया और उसके फॉरहेड पर किस किया। उसे अच्छी तरह सुलाने के बाद वेद वहां से निकल गया था और कुछ ही देर में वो अंकुश के सामने खड़ा हुआ था। अंकुश की हालत ठीक नहीं थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके जिस्म से खून निकल रहा था। वो वेद की आंखों में घूर कर देख रहा था। उसके साथ इन दिनों जो भी हो रहा था वो सब वेद के कहने पर ही हो रहा था। ये सब अंकुश के बर्दाश्त के बाहर था। वो वेद से पहले से ही नफरत करता था और वेद ने उसके साथ जो करवाया उसके बाद उसकी नफरत कई गुना बढ़ चुकी थी। वहीं उसकी हालत देखकर वेद के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी जो अंकुश को और चिढ़ा रही थी।